Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, परमात्मा से हमारा बड़ा ही गहरा नाता है, इसीलिए जब कभी उनकी चर्चा होती है तो लगता है कि उनकी चर्चा होती रहे और कामना रहती है कि हम उनके पास रहें, उनके साथ रहें या उनका आशीष सदा हमारे ऊपर बना ही रहे। हमारी चर्चा होती रही है लगातार कि कैसे हम हमेशा उनके साथ रह सकते हैं या कैसे उनका आशीर्वाद हमें लगातार प्राप्त हो सकता है। एक विशेष हमारी जो बहन है रांची की, उन्होंने कुछ पंक्तियाँ इसी संबंध में हमें भेजा है और बहुत ही प्यारी थी, इसीलिए मुझे लगा कि आज की शुरुआत मैं इससे ही करूं। वो कहती हैं कि जब छोड़ चलूं इस जग को तो होठों पे नाम तुम्हारा हो, फिर चाहे स्वर्ग मिले या नर्क, पर हृदय में वास तुम्हारा हो। मेरे तन हो तेरे नाम की चादर, जहां प्राण निकले इस तन से वो अनाम शहर तुम्हारा हो। छूटेंगे रिश्ते इस संसार के, पर वहां तक का साथ तुम्हारा हो। फिर ना डालना झूठे संसार में, रखना सिर्फ वहां जहां होता सिमरन तुम्हारा हो। तो सचमुच ये पंक्तियाँ बड़े हृदय से निकलती हैं और जब कभी ऐसे भाव जागृत होते हैं तो लगता है कि सचमुच उसके साथ का आनंद कुछ और ही होगा। इसीलिए लगातार हम लोग समाधान कार्यक्रम में इसकी चर्चा करते रहते हैं कि कैसे योग के माध्यम से हम उनकी समीपता का अनुभव कर सकें। और जो प्रश्न आप लोगों के आते हैं उनमें से लगातार ये प्रश्न बने ही रहते हैं कि कैसे हम योग के माध्यम से उन तक पहुँचें और कैसे योग को सरल और सहज करें। आइए भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं और साथ ही ये जानते हैं कि कैसे उनकी समीपता को हम प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही योग को और सरल सहज कैसे किया जा सकता है। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
शुक्रिया।
सदियों की एक चाहना, एक प्यास है कि उनके साथ रहें, लेकिन योग में कठिनाई हमेशा बनी ही रहती है।
बिल्कुल, आपने पंक्तियाँ पढ़ी। बहुत लोग ये सोचते रहे कि अंत परमात्मा की याद से हो, पर ये काम कठिन रहा। बहुत लोग सोचते रहे अब यात्रा उनके साथ हो, पर सब नहीं कर पाए। मुख पे उनका ही नाम हो, अंत आदि सब उनके साथ हो, हृदय में उनका वास हो। रहीम ने भी लिख दिया है, रहीम थे तो मुस्लिम, पर भक्त बहुत थे। श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा कि अगर मुझे पत्थर बना दो अगले जन्म में तो उसी पहाड़ का बनाना जो तुमने उठाया था, यदि गाय बना दो तो उन्हीं के बीच रहूं जिनको तुम चराया करते थे, कभी का मुरली बना के अपने अधरों पे रख लेना। साथ की कामना सब करते आए हैं। श्री कृष्ण भी संसार की सबसे महान हस्ती नेक्स्ट टू गॉड, उसके रहने की कामना, उसके साथ होने की कामना, उसके राज्य में जाने की कामना या फिर परमात्मा की समीपता, तो ये कामना तो बहुत ही सुंदर है। परंतु ये कैसे आए? भक्तों के मन में भी भगवान के प्रति प्रेम तो बहुत रहा। किसी ने बाल कृष्ण के रूप में उससे बहुत प्यार किया। अधिकतर भक्त बाल कृष्ण छोटा गोद में उठा रहे हैं, सुला रहे हैं,
झूले में झुला रहे हैं,
झूले में झुला रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं। बहुत भक्तों की कहानी मिलती है कि वो बाल प्रतिमा वो सदा अपने साथ रखते हैं, उसे बात करते हैं, उसे खेलते हैं, उसको खिलाते हैं। बहुत अच्छे ये भक्तों के भी प्यार भरे अनुभव सुनने को मिलते रहे, कलयुग में भी रहे तो द्वापर युग में भी रहे। लेकिन अब जब परमात्मा स्वयं आकर अपनी पहचान देते हैं तो उसमें एक विशेष बात वो अपने मुख से कहते हैं, जिस बात ने मुझे बहुत स्ट्राइक किया था। बहुत साल पहले मैंने प्रथम बार जब वो सुनी, हो गए होंगे 42-43 साल, मैं तुम्हारा हूं। दिल गदगद हो गया। भगवान सामने बैठ कर कह रहा था, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लेकर आया हूं, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। बहुत भा गए ये महावाक्य के मन को, वो भी हमारा, उसका सब कुछ भी हमारा, और वो हर समय हमारे लिए तैयार मदद करने को। वो कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कलयुगी दुखी दुनिया में भी दुखी हों, चाहता है सदा मुस्कुराते रहें, आनंद विभोर होते रहें। तो अगर हम उनसे ये नाता जोड़ लें सच्चे दिल का, देखिए लोग बुद्धि का नाता बहुत जोड़ने की कोशिश किया करते हैं। बुद्धि योग अलग चीज है, इस योग को बुद्धि योग भी कहते हैं। बुद्धि हम परमात्मा से लगाते हैं, लेकिन अगर उसमें भावनाएं नहीं है, अगर दिल नहीं गया है उसमें, तो मजा कम आता है। तो वो भगवान भी है, लेकिन वो हमारा भी है, हमारा वो खुदा दोस्त भी है, परम प्रियतम भी है, वो हमारी माँ भी है, बाप, टीचर, सदगुरु भी है, वो हमारा है। इस फीलिंग को जितना जितना हम बढ़ाते हैं, समीपता होती जाती, अपनापन बढ़ता जाता है। और विचारणीय है, भगवान से अपनापन हो जाए और उसके बाद तो जैसे कुछ बचता ही नहीं। न केवल हम उसके प्यार में मगन रहेंगे, लेकिन उसका भी प्यार भरपूर हमें प्राप्त होता रहेगा। तो उस दिन से 43 इयर्स हो गए होंगे, मैंने इस समीपता को बहुत बढ़ाया और मैं इस सीन को बार बार याद करता था। वो मेरे सामने बैठ कर कह रहा है, बच्चे मैं तुम्हारा हूँ। बहुत दिल खुश होता रहा और अब उससे बहुत ज्यादा समीपता का आभास होता है।
बिल्कुल। तो भ्राता जी, क्या हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी यही है कि लगातार यदि हमारे पास 10 फोन कॉल आते हैं तो उसमें से 4 या 5 तो ऐसे होते ही हैं कि हम मेडिटेशन तो कर रहे हैं, योग तो कर रहे हैं, लेकिन योग लग नहीं रहा है, योग का सुख नहीं मिल रहा है। तो क्या उत्तर यही समझे कि समीपता बढ़ाई जाए?
समीपता के पहले जहाँ मनुष्य का प्यार होता है, वहाँ उसकी याद स्वतः ही मन में बनी रहती है। और ये प्यार भी एक ऐसी चीज है कि अनेक और संकल्पों को ये स्वतः ही समाप्त कर देती है। देखिए, देहधारियों के प्यार में भी यही होता रहा। परमात्म प्यार की बात थोड़ी सूक्ष्म हो जाती है, लेकिन यदि हम उसको पहचान लें, उसे अपना नाता जोड़ लें और ये जान लें कि वो हमें कितना प्यार करता है, ये जान लें वो कितना सुंदर है, ये पहचान लें वो कितना गुणवान है, और ये भी महसूस कर लें वो हमारे लिए कितना कुछ करता है, समस्याओं में, मुसीबतों में कितनी बार उसने हमें नया जीवन दिया होगा, तो हमें उससे प्यारा कोई नहीं लगेगा। मेरे साथ यही हुआ। मैं छोटा आया यहाँ, मुझे बुद्धि उससे मिली, शक्तियाँ उससे मिली, योग्यताएं उससे मिली। जीवन में अनेक बार दैहिक कठिनाइयों में वो सुप्रीम सर्जन बनकर मेरे सामने आया, उसने उपचार किया, बहुत प्यार और सम्मान महसूस हुआ उसकी ओर से मिलता हुआ, तो मन उसके प्यार में मगन रहने लगा। तो ये ऐसी चीज है कि अगर मन प्यार में मगन हो जाए तो एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों का मन बहुत भटकता है, जो एकाग्रचित नहीं होते, जो बहुत फोन करते रहते हैं, हमारा योग नहीं लगता, वो उसके प्रति अपने प्यार को बढ़ाएं, इस अपनेपन को बढ़ाएं, इस रिलेशनशिप को जोड़ें, तो प्यार में जैसे जैसे मगन होंगे तो मन उसमें लगने ही लगेगा।
एक चीज आपने कही भ्राता जी कि आप छोटेपन से आए, आपको बहुत सारी चीजें उन्होंने दी, सारी चीजें दी, बुद्धि को विकसित किया, सब कुछ दिया। तो अब ये जो देने वाली बात है और मैंने वो लिया, वो अनुभव किया, तो आसान हो जाता है उसके उपकारों को याद करना, उसके प्यार में डूबना। लेकिन अब यदि मेरे पास ऐसी अनुभूति नहीं है कि उसने मुझे कुछ दिया, वो मेरे अनुभव में आया, अब तक ऐसा ही है कि जो भी मैंने किया अपने बूते पे किया, उससे मुझे मिला, वो फीलिंग नहीं है। यद्यपि उन्होंने ही दिया है, लेकिन वो फीलिंग नहीं है। तो ये फीलिंग प्यार की वो पैदा नहीं हो पाती, कैसे प्यार पैदा हो?
देखिए, यही हुआ, मैं अपने ही अनुभव से इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ यही हुआ, मैं भक्ति में बहुत सुनता था पहले, मैं भक्ति ज्यादा नहीं किया, लेकिन भक्तों की बात सुनता था, फलाने भक्त ने ऐसी तपस्या की, भगवान राजी हो गया, राजी हो के सामने प्रकट हुआ और कहा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, और जो मांगा था अस्तु कर दिया। मैं भी सोचता था क्या भगवान हम पे भी कभी राजी हो सकता है। तो जब यहाँ आए, उसकी समीपता का आभास हुआ, उसको इन आंखों से देखा। देखिए, उसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन हमें जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई उसके द्वारा हमने इन आंखों से ही जैसे उसे देख लिया, तो पता चल गया कि भगवान कैसे राजी होता है अगर हम उसकी आज्ञा मानते हैं। कि आज्ञाओं पर चलने में कठिनाई भी होती है, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाएं अलग हैं। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे परमत, तो मनुष्यों की मत और होती हैं। किसी पत्नी के लिए उसकी पति की कुछ और मत होगी, बच्चों के लिए माँ बाप की कुछ और मत होगी। लेकिन वही लोग यदि भगवान की मत पर चलने लगते हैं तो वो राजी हो जाता है, और जब वो राजी हो जाता है तो बहुत कुछ देने लगता है, और जब वो देने लगता है तो उसका आभास होगा ही। ऐसा नहीं होगा कि वो दे रहा हो और हमें आभास ना हो, लेकिन इस आभास को काटने वाली भी एक चीज है, मैंपन। ये मैंपन ऐसी दीवार है कि भगवान मनुष्य को बहुत कुछ देता भी रहे तो वो सोचेगा मैं कर रहा हूं, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता। ये मनुष्य का अहम, ये मैंपन उसकी समीपता को दूरी में बदलता रहता है। तो भगवान को राजी करना होगा, उसकी आज्ञाओं पर चलकर तब आभास होगा वो हमें क्या क्या दे रहा, क्लियर आभास होगा। ये चीज हमारे बलबूते की नहीं, ये गॉडली गिफ्ट है।
बिल्कुल, मतलब हमें एक कदम बढ़ाना होगा। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि हिम्मत का एक कदम आप बढ़ाओ तो मदद के हजार कदम परमात्मा अपनी तरफ से देंगे। वो एक कदम शायद बढ़ाने वाली बात है, और ये आज्ञाओं को मानने वाली बात ही होगी। ब्रदर जी, कई बार ऐसा मन में रहता है कि वो अपनी तरफ से कुछ कर दे तो हम चलना शुरू कर दें। ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब तक वो कुछ अनुभव नहीं करता, कुछ प्राप्ति नहीं होती, या थोड़ा सा विश्वास नहीं जागा हुआ होता, तब तक वो चलने में आनाकानी कर रहा होता है। तो एक बार कुछ ऐसा हो जाए तो हम चलना शुरू कर दे।
ये मानवीय फितरत है। ये तो उसके ऊपर है कि वो कर दे, लेकिन वो इस तरह की चीजें नहीं करते। हम चर्चा तो करते आ रहे, लेकिन आप जानते हैं अनेक मनुष्य गुरु लोग चमत्कार दिखाते रहे। साईं बाबा के चमत्कार तो प्रसिद्ध है, लोग उनकी ओर अट्रैक्ट होते रहे, इवन उनको ही भगवान मानने लगे। भगवान चमत्कार नहीं दिखाता, भगवान वो कार्य नहीं करता जो मनुष्य करते आ रहे हैं। इसलिए उसके कर्तव्यों के लिए कहा गया उसके कर्म दिव्य और अलौकिक होते हैं। जो लोक वाले नहीं करते, जो साधारण मनुष्यों से परे हैं, वो उसके कर्म होते हैं। तो भगवान ये चमत्कार नहीं दिखाता, वो चाहे तो बहुत सारे लोगों को अपना साक्षात्कार करा के अपने पास ले आए। लेकिन हमने ये देखा कि प्रैक्टिकल अनुभव है, हजार लोगों के होंगे कि लोगों को साक्षात्कार हुए, उन्हें अच्छी इस तरह के कई तरह के दर्शन और कई तरह की गुड फीलिंग हुई। लेकिन ये मार्ग अध्यात्म का मार्ग है, ये मार्ग साधनाओं का, त्याग का, तप का मार्ग है। ये केवल देख लेने से सिद्ध नहीं होता है। इसलिए दिखाने के बाद एक दो मास तो उन्हें खुशी रही और नशा रहा, फिर मोह माया में वो ऐसे उलझे कि वो सब कुछ भूल गए। वो कहने लगे, अरे ये तो फलाना बाबा भी दिखा देता है, इसमें कौन सी बात हुई। तो ढीले हो गए, बस जैसे पथ विमुख हो गए, और उन्हें कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। ये बात वो भी जानता है कि मेरा ऐसा करने से ये कोई सदाकाल के लिए योगी या शक्तिशाली या पवित्र नहीं बन जाएंगे, उसके लिए इन्हें स्वयं ही करना होगा। और देखिए एक चीज और है, बहुत सारे हमारे दर्शक इस बात को अवश्य स्वीकार करेंगे कि भगवान की शक्ति से हमें कुछ मिल जाए, उससे ज्यादा कहीं महत्व है हम स्वयं अर्जित करें, अपनी मेहनत से प्राप्त करें। और जब हम अपनी मेहनत करेंगे तो उसकी मदद हमें मिलेगी, ये उसका वायदा है। तो हमारी मेहनत और उसकी मदद दोनों को मिलाकर यदि हम कुछ प्राप्त करेंगे तो एवरलास्टिंग होगा और हमें बहुत शक्तिशाली बनाने वाला होगा।
बिल्कुल, मतलब हमें आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि जब तक हम नहीं बढ़ेंगे, और वैसे ही कुदरत का नियम भी है ब्रता जी, जो करता है वो पाता है ऐसा भी कहा जाता है। तो शायद यदि हम अध्यात्म के पद पे जब तक बढ़ेंगे नहीं, तब तक वो अनुभूतियां भी हमें प्राप्त नहीं होंगी। सृष्टि का नियम भी शायद यही।
और भी देख लीजिए, इतिहास उठा लीजिए, लोगों को अपने बाप से राजाई मिली
जी,
बच्चे योग इतने नहीं थे, खाए पिया मस्त रहे, शराब पिए पड़े हैं, हम तो राजा हैं कुछ नहीं, और बस जल्दी उनकी राजाई, उनका वंश ही समाप्त हो गया। जब भी वंश समाप्त हुए, देखिए राजवंश चलते आए हैं, किसी की 6 पीढ़ी ने राज किया, किसी 7 ने किया, किसी 5 ने किया। जब जब उसमें आलसी लोग और व्यसनी लोग आ गए, शासक बन गए, तब समझ लो उनके वंश का समाप्त
जी,
खेल खत्म होने जा रहा है। तो भगवान हम सबको अपनी ओर से न देकर हमें योग्य बनाना चाहता है कि मैं तो दूंगा ही, लेकिन तुम अपनी योग्यताओं से, अपनी मेहनत से लो, तो उसका महत्व तुम्हारे पास होगा और वो चिरस्थायी होगी और तुम्हें बहुत शक्तिशाली बनाने वाली होगी। तो आज की भाषा में कहूंगा कि भगवान हमें लीडर बनाता है, राज करना सिखा रहा है
जी,
सशक्त बनाता है। कुछ मांग कर प्राप्त करो, कुछ आप ही मिल जाए, वो नहीं, लो।
बिल्कुल, उनका ये तरीका भी बहुत सुंदर है कि वो कुछ चमत्कार ना दिखा के, सत्य ज्ञान देकर के हम इस योग्य बना रहे हैं। दादा जी कुछ मेल्स आए हैं, अब इनके ओर लिए चलता हूँ। अनुराग त्रिपाठी जी हैं, पहला मेल सहारनपुर से आया हमारे पास और ये कहते हैं दादा जी कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश की बात करती हैं जबकि संसार में हर तरफ प्रगति ही प्रगति हो रही है। विज्ञान अपनी चरम सीमा पर है, उसने अनेक सुख के साधन मनुष्य को दिए हैं। इस संसार को मानो विज्ञान ने स्वर्ग बना दिया है, तो क्या इसको नष्ट करना भगवान का अन्यायपूर्ण कार्य नहीं होगा?
हाँ, देखिए प्रश्न इनका बिल्कुल विवेकपूर्ण है
जी।
और लोग ये भी सोचते हैं, पहले भी कोई लोग विनाश की भविष्यवाणी करते रहे
लेकिन हुआ कुछ
दिसंबर
नहीं।
भी किया था 12-21 दिसंबर किया था, कुछ हुआ तो नहीं, तो लोगों का इस बात में विश्वास भी नहीं रहा। हम ये कहेंगे कि विज्ञान का विकास तो सचमुच माननीय है और प्रत्यक्ष है, हम लोग जो ये कर रहे हैं ये भी विज्ञान का विकास ही है
जी।
विज्ञान ने जो विकास किया, हम पहले भी चर्चा करते आए हैं, ये कंटिन्यू रहेगा, युग बदलेगा। अब इसको विनाश न कहकर परिवर्तन कहेंगे, तो ये विकास आगे बढ़ेगा। जो प्रगति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हुई है वो सब कंटिन्यू रहेगी, केवल नष्ट होंगे पाप और पापी। क्योंकि ये जो अनैतिकता है, ये जो चरित्रहीनता है, कहीं रेप हो रहे हैं, बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, लोगों में स्वार्थ हो गया है, अपनापन और सच्चा प्यार लोप होता जा रहा है, तो इससे ये मानव सभ्यता प्राय नष्ट होने पर आ गई है। क्योंकि एक बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है जो चिंतनशील प्राणी ही समझ सकते हैं कि जब कोई भी सभ्यता काम वासना प्रधान हो जाए, समझो उस सभ्यता की एंड बस समीप है, समाप्ति है। तो ये आजकल की सभ्यता काम वासना प्रधान हो गई। अब देख लीजिए, छोटे बच्चे को देख लीजिए, युवकों को, इवन बूढ़े जो 80 साल के हैं, बुरा ना कोई माने, वो भी काम वासना के अधीन दिखाई देते हैं। तो ये समाप्ति की ओर है, लेकिन ये सभ्यता समाप्त होके देव सभ्यता आ जाएगी ना, जिसमें ये विज्ञान का विकास कंटिन्यू होगा। इसलिए इन्हें ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं कि भगवान इस ऐसी सुंदर विकासशील सृष्टि को क्यों समाप्त कर देगा, ये उसका न्यायपूर्ण कार्य होगा। बिल्कुल ऐसे ही कोई भी किसी अच्छी चीज को नष्ट करे तो सब लोग उसके विरोधी हो जाते हैं, कोई उसे याद भी नहीं करेगा। लेकिन एक चीज यहाँ होने जा रही है जो प्रारंभ हो गई है
जी,
धीरे धीरे वो समय हमारे सामने आता जा रहा है और मुझे लगता है 2-4 साल में 5 साल में वो समय हमें प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा, जब इस संसार का हर प्राणी भगवान से रिक्वेस्ट करेगा। क्या कहेगा? हे प्रभु, ये संसार रहने योग्य नहीं रहा, इसे नष्ट कर दो। उसके पास अथाह धन संपदा होगी लेकिन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, पति पत्नी में एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे। रोज केस आते हैं ऐसे हम लोगों के सामने, आप जानते हैं
जी।
बच्चे होंगे, परिवार बहुत अच्छा होगा लेकिन लोग बीमार होंगे, दवाइयां नहीं होंगी, मानसिक बीमारियां बढ़ जाएंगी, सबसे बुरी चीज होगी, रात को लोग सो नहीं पाएंगे बहुत सारे, तो एक मास पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड भगवान को प्रे करेगी, इसको नष्ट करो, अब हमें एक नया संसार चाहिए या हमें मुक्ति दो। तब भगवान वो कार्य करेगा इसको समाप्त करने का। समाप्त भी जैसे मैंने कहा, संपूर्ण रूप से नहीं
जी,
एक परिवर्तन होगा।
बिल्कुल, जितनी भी प्रकार की विकास है वो सब चीजें आगे बढ़ेंगी और संपूर्ण मानव।
हाँ, मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं कि विज्ञान तेजी से रिफाइन होता जाएगा। जैसे अब हम देख रहे हैं कि विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में मोबाइल दे दिया, उसको लैपटॉप दे दिया, इंटरनेट दे दिया, टावर्स लग गए हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ गई। ये विज्ञान के चमत्कार ही तो है, लेकिन मनुष्य इसका पूरा सुख नहीं ले पा रहा है। जो केस आ रहे हैं कि इंटरनेट से लोगों की वृत्तियां बिगड़ रही हैं, युवक पथ विमुख हो रहे हैं और इनसे जो बैड एनर्जी निकल रही है वो बीमारियां पैदा कर रही है, ब्रेन पर बुरा इफेक्ट डाल रही है। ये विज्ञान अब तेजी से रिफाइन होगा, तो इसका जो ये स्वरूप है कि सुखों के साधन भी हैं लेकिन नुकसानदायक चीजें भी हैं, ये समाप्त होके केवल सुखदायी चीजें सर्च हो जाएंगी। तो विज्ञान धीरे धीरे परफेक्शन की ओर चल रहा है, और जब विज्ञान परफेक्ट हो जाता है तो वो इम्परफेक्ट मनुष्यों को समाप्त करेगा और जो परफेक्ट बीइंग होंगे, देवी देवता, उनके काम आएगा। तो ये एक बहुत सुंदर रहस्य है। तो विज्ञान तो एक बहुत सुंदर वरदान है, ये कंटिन्यू रहेगा और सबको इससे सुख मिलेगा बहुत ज्यादा और ज्यादा, जो आज हमारी कल्पनाओं में भी नहीं। ये चीज जो आज हमारे पास है ये भी तो कल्पनाओं में नहीं थी ना, 30 साल पहले कहाँ किसी को पता था कि सबके हाथ में खिलौना होगा तो ये सब इस तरह का।
एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है बेटा जी, जब कभी विनाश की बात या महाविनाश की बात लोग सोचते हैं तो सोचते हैं जल प्रलय हो जाएगी या बहुत मतलब सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान दे रहे हैं उसके आधार पर अब ये समझ में आता है कि नहीं, जो अच्छाइयां हैं वो जीवित रहेंगी, बुराइयों का ही केवल अंत होगा। दादा जी हमारे पास एक पत्र भी आया हुआ है, ये पत्र कोल्हापुर से कल्पना जी ने भेजा है और ये कहती हैं कि ईश्वरीय पढ़ाई में पीछे हटने का कारण क्या है ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विद्यालय से जुड़ते हैं और वहाँ से फिर बाहर भी निकल आते हैं अर्थात पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो क्या कारण लगता है ईश्वरीय पढ़ाई को छोड़ने का या ईश्वर को पा लेने के बाद ईश्वर को छोड़ना, ये बात समझ में नहीं आती है। कल
होता है, ये होता है, जैसे स्कूल कॉलेजों में भी कई बच्चे जाते तो रोज पढ़ने हैं पर स्कूलों में नहीं पहुंचते और कहीं पहुंच के शाम को घर पहुंच जाते हैं लेकिन वो कुछ और ही पढ़ के आ जाते हैं
जी।
ये भी हमारी एजुकेशन है और सभी का मन लंबे काल तक इसमें नहीं लगता है। देखिए अगर बात 2-4 साल की हो तो मनुष्य कुछ भी कर लेता है, लेकिन बात लाइफ लॉन्ग चलने वाली हो तो कई मनुष्य इसमें बोर होते हैं क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट और कहीं कहीं भी होते हैं
जी।
और जो मुख्य बात है वो है यहाँ प्योरिटी की, माया को संपूर्ण रूप से जीतने की। पूर्व के ऐसे बुरे संस्कार होते हैं कि वो वासनाओं से ज्यादा ग्रस्त रहे हैं अपने जीवन में, इस जीवन में, इस पिछले जीवन में और पिछले में, तो वो माया को पूरी तरह जीत नहीं पाते, या वो मेहनत भी करते हैं उनके मन में युद्ध चलता रहता है, अंदर से वासनाओं का फोर्स और बाहर से वो उसको जीतने का प्रयास करते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बहुत अच्छी बात आ गई, अर्जुन यही प्रश्न पूछता है, प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ पथ पर चलने वाला व्यक्ति यदि असफल हो जाए तो वो कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता, वो कहीं बिल्कुल ही नष्ट खत्म तो नहीं हो जाता? तो उसको उत्तर दिया है कि ऐसे लोगों का पुनर्जन्म भी अच्छे घरों में होता है जहाँ धार्मिक वातावरण हो, जहाँ स्पिरिचुअलिटी हो, जहाँ सात्विकता हो, खान पान सतो प्रधान हो, तो ये लोग पुनः अध्यात्म के मार्ग पे आ जाते हैं। इसलिए मेरे मार्ग पे चलने वाले कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं, ये विनाश, लेकिन माया से क्योंकि युद्ध होता है, इस युद्ध में ऊपर नीचे होता रहता है और इस युद्ध के लिए जो अस्त्र शस्त्र हैं, कवच है हमारे पास, एक शक्ति है हमारे, मैं कहूंगा कि एटम बम है, योग की शक्ति जो इस माया को नष्ट करने में सक्षम है। लेकिन जो लोग योग अभ्यास अच्छा नहीं कर पाते, मान लो ज्ञान मार्ग पे तो आ गए लेकिन फिर अपने काम धंधों में लगे हुए हैं, भाई ज्ञान हमें हो गया हम पवित्र बन जाएंगे, लेकिन बिना योग की शक्ति के कोई भी पवित्रता का सुख नहीं ले सकता। तो बहुत लोग क्योंकि योग अच्छा नहीं कर पाते हैं इसलिए वो माया से हार के पीछे हट जाते हैं, भगवान से एक दो बार मिलन मना के भी उनके मन में निराशा आ जाती है कि हमसे अब नहीं होगा, लेकिन उनका वो पुण्य जमा रहता है, ऐसे नहीं वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जो उन्होंने पुण्य किया, ईश्वरीय कार्यों में सहयोग दिया, 5-10 साल पवित्रता को अपनाया, अपने जीवन में बहुत अच्छाइयां लाई, तो अच्छाई तो कंटिन्यू रहेंगी ना, वो तो कहीं जाने वाली नहीं है, तो इस कारण से कई लोग पीछे हट जाते।
तो प्रीति जी इनके प्रश्न से एक प्रश्न मैं ऐड करूंगा कि इस मार्ग पे, क्योंकि अच्छाई का मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है और हर एक व्यक्ति चाहता तो होगा कि यहाँ की जो मंजिल है, सर्वोच्च मंजिल है, वहां तक वो पहुंच जाए, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कोई भी इस पढ़ाई में फेल ना हो, इस अच्छाई के मार्ग पे सतत चलता रहे, भले माया आए, उठा पटक हो, लेकिन मन में क्या ऐसा दृढ़ विश्वास रखें, संकल्प रखें, क्या ऐसा पुरुषार्थ हो जो सतत आगे बढ़े?
बिल्कुल, बहुत छोटी सी चीज, रोज ब्रह्म मुहूर्त में परमात्म मिलन करें। बहुत अच्छा समय है जब भगवान हमें वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपनी शक्तियां देते हैं, उसको कभी मिस ना करें। प्राय पीछे वो लोग हटते हैं जो 7-8 बजे उठते हैं। दूसरी बात, रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जाते हैं, रोज क्लास अटेंड करें। कई लोग सोचते होंगे हम दूर हैं या नहीं कर पाते, ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन अवश्य हो रोज। इसके अलावा दिनचर्या में कुछ अपने नियम जरूर बनाएं। प्योरिटी का मार्ग अपना लिया, अब गंदगी का मार्ग हमारा मार्ग नहीं है। शाम को या रात को कम से कम आधा घंटा योग अभ्यास अवश्य हो जाए। कामकाज में भी थोड़ा बहुत स्वमान का अभ्यास जरूर चलता रहे। अगर इतना थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो माया से कभी हारेंगे नहीं।
बिल्कुल, चलिए सुंदर की पॉइंट आपने दे दिए हैं भ्राता जी। और सबकी इच्छा तो यही होती होगी कि परमात्मा को छोड़ के कहाँ जाया जा सकता है जिसने सृष्टि को रचा है। और यदि कोई जाता है तो शायद इस अनुभूति की कमी के कारण या अपनी कमी के कारण ही जाता होगा। सब बने रहें और सब आगे बढ़े, यही कामना रहेगी। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वैसे तो ये जो मार्ग है, मैं हमेशा कहता हूँ नवीन मार्ग है, और कई बार अनुभूति होती है, कई बार नहीं हो पाती है, क्योंकि होता भी ऐसा है ना कि कई बार मन की स्थिति अच्छी है, कई बार मन की स्थिति अच्छी नहीं है। शुरुआत ही मैंने यहीं से की थी कि फ़ोन कॉल जो हमारे पास आते हैं या मेल आते हैं उनमें भी ज़्यादातर यही रहता है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अनुभूति उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। लेकिन कहते हैं कि करत करत अभ्यास के ना, कि जितना हम अभ्यास करते जाते हैं उतना अच्छा अनुभव हमें प्राप्त होता जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ये कहा गया है। तो हम अपने अभ्यास को भी बनाए रखें और साथ ही साथ अपनी हिम्मत को, अपनी दृढ़ता को भी अवश्य कायम रखें। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि यदि एक दीवार को आपको गिराना है और उस दीवार को गिराने के लिए 100 हथौड़े मारने पड़ते हैं, तो पहले हथौड़े की चोट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 100वें हथौड़े की। तो यदि हम लगातार अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से हमें वो मंजिल प्राप्त होगी, वो अनुभूति प्राप्त होगी। बात ये है अपने विवेक की कि हम एक अच्छे पथ पर हैं और अच्छे पथ पे परमात्मा की मदद मिलती जरूर है। ये जरूर कहते हैं कि वो देर से सुनता है, लेकिन सुनता तो जरूर है ना। वो ये चाहते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, कि इन्हें मैं शक्तिशाली बनाऊं, इन्हें मैं योग्य बनाऊं। और जब बच्चा गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, तो कई बार ये चीज़ें भी उसे चलने में मदद करती हैं। तो हर चीज़ को हम सकारात्मक रूप से लें, उस पर विश्वास बनाए रखें और इस अच्छे पथ पर चलते हुए अपनी अनुभूतियों को आगे बढ़ाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी समाधान कार्यक्रम में। नमस्कार।